ేతసర్వాణి మయి అన్యస్ఫల బోధియోగం ఉపాసేత్యాచి సతతం భావ ేతసర్వర్మాణి మైసన్యస్య మత్పరః బుద్ధియోగముపాసేత్య మాచితః సతతం భవ.
శబ్దార్థ శబ్దార్థ చేతసా బుద్ధి సే సర్వకర్మాణి సమస్త ప్రకార కే కార్య మయి ముజ్మే సన్యస్య त्याग कर मत पर मेरे संरक्षण में बुद्धि योगम भक्ति के कार्यों की उपासित्या शरण लेकर मत चित्त मेरी चेतना में सततम चौबीसों घंटे भव हो. अनुवाद एवं तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की अनुवाद. सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो और मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो. ऐसी भक्ति में मेरे प्रति पूर्णतया सचेत रहो. तात्पर्य
अनुवाद
अनुवाद एक बार रिपीट करिए. सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो और मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो. ऐसी भक्ति में मेरे प्रति पूर्णतया सचेत रहो. तात्पर्य जब मनुष्य कृष्ण भावनामृत में कर्म करता है तो वह संसार के स्वामी के रूप में कर्म नहीं करता. उसे चाहिए कि वह सेवक की भांति परमेश्वर के निर्देशानुसार कर्म करे. सेवक को स्वतंत्रता नहीं रहती, वह केवल अपने स्वामी के आदेश पर कार्य करता है. उस पर लाभ हानि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता. वह भगवान के आदेशानुसार अपने कर्तव्य का सच्चे दिल से पालन करता है. अब कोई यह तर्क दे सकता है कि अर्जुन कृष्ण के व्यक्तिगत निर्देशानुसार कार्य कर रहा था, लेकिन जब कृष्ण उपस्थित न हो तो कोई किस तरह कार्य करे. यदि कोई इस पुस्तक में दिए गए कृष्ण के निर्देशों के अनुसार तथा कृष्ण के प्रतिनिधि के मार्गदर्शन में कार्य करता है तो उसका फल वैसा ही होगा. इस श्लोक में मत परह शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है. यह सूचित करता है कि मनुष्य जीवन में कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होकर कार्य करने के अतिरिक्त अन्य कोई लक्ष्य नहीं होता. जब वह इस प्रकार कार्य कर रहा हो तो उसे केवल कृष्ण का ही चिंतन इस प्रकार से करना चाहिए. कृष्ण ने मुझे विशेष कार्य को पूरा करने के लिए नियुक्त किया है, और इस तरह कार्य करते हुए स्वाभाविक रूप से कृष्ण का चिंतन हो आता है. यही पूर्ण कृष्ण भावनामृत है. किंतु यह ध्यान रहे कि मनमाना कर्म करके उसका फल परमेश्वर को अर्पित न किया जाए. इस प्रकार का कार्य कृष्ण भावनामृत की भक्ति में नहीं आता. मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण के आदेशानुसार कर्म करे. यह अत्यंत महत्वपूर्ण है. कृष्ण का यह आदेश गुरु परंपरा द्वारा प्रामाणिक गुरु से प्राप्त होता है. अतएव गुरु के आदेश को जीवन का मूल कर्तव्य समझना चाहिए. यदि किसी को प्रामाणिक गुरु प्राप्त हो जाता है और वह निर्देशानुसार कार्य करता है तो कृष्ण भावना में जीवन की सिद्धि सुनिश्चित है. हरे कृष्ण.
ओम ज्ञान జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య హరే కృష్ణ భగవద్గీత కా సందేశ హే పూరే మానవ సమాజ కే లియే హే. हमें ये नहीं सोचना चाहिए. आपको सुनाई दे रहा है पीछे आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि ये संदेश केवल भारतीयों के लिए है या हिंदुओं के लिए है, यह पूरे समाज के लिए। और अगर हम ध्यान से गीता का संदेश का पालन करें तो जीवन सफल हो सकता है। तो ये श्लोक आपको 18वें अध्याय में प्राप्त होता है और गीता का उपदेश कुछ श्लोकों के बाद समाप्त हो जाएगा। गीता के द्वारा भगवान हमें ये शिक्षा दे रहे हैं कि हमें हर कार्य करना चाहिए उनकी खुशी के लिए। कार्य के बगैर को तो कोई रह नहीं सकता, भगवान लक्ष्य होना चाहिए भगवान की खुशी। जैसे भगवान गीता में कहते हैं, यद करोषि यद जश्नासि यद्योषि ददासि यद या तपस्वती कौन थे सर कोई समर। जो भी तुम करो, जो भी दान दो, जो भी तपस्या करो, जो भी तुम खाओ, ये सब होना चाहिए मेरी खुशी के लिए। तो ये है समर्पण भगवान को, हर कार्य करना भगवान की खुशी के लिए। और इस श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं, हर कार्य करो मेरे ऊपर निर्भर रहकर। उसका ये अर्थ नहीं कि हम प्रयास नहीं करें। जैसे गीता में हम देखते हैं भगवान ने अर्जुन को कहा, तस्मा सर्वेश कलेशो मां मनुस्मार युद्ध चार, मन और बुद्धि को मुझे अर्पण करते हुए तुम इस युद्ध में लड़ो। तो गीता का ये संदेश नहीं हम कुछ करें नहीं, गीता का संदेश है हम हर कार्य करें भगवान की खुशी के लिए। गीता के दूसरे अध्याय में अर्जुन ने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा मेरा क्या कर्तव्य होना चाहिए। अर्जुन ने कहा कि अब मैं आपकी शरण ले रहा हूं, मुझे ज्ञान दो। और फिर भगवद गीता का ज्ञान आरंभ होता है इस शिक्षा के साथ कि आत्मा और देह में अंतर है नहीं है, हमारे असली स्वरूप के विषय में हमें ज्ञान प्राप्त होता है। आगे के अध्यायों में भगवान कहते हैं, कर्म करो पर भगवान की खुशी के लिए। और भगवान उदाहरण देते हैं, कमल का फूल जैसे जल में होता है तो जल को छूता नहीं, उसी प्रकार भौतिक समाज में रहते हुए हमें दोषों से बचना है। और आगे भगवान कहते हैं कि हर वो कार्य करो जिसके द्वारा आप मुक्त हो सको। यज्ञ नहीं आता कर्म नहीं आता तो कयम कर्म बंधना। तो गीता में भगवान ये कह रहे हैं, भक्ति के माध्यम से ही तुम मुझे जान सकते हो। यह है गीता का निर्णय। गीता का निर्णय और भागवतम के निर्णय में या चैतन्य चैतन्य के निर्णय में कोई अंतर नहीं है। श्रीमद् भगवत द्वारा हमें शुद्ध भक्ति का ज्ञान मिलता है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, भक्ति अब माम अभिजानती, तो मुझे केवल भक्ति के माध्यम से जान सकते हो। और इस विषय में भगवान ने कहा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम भक्तिया, तुम अगर प्रेम और भक्ति के साथ एक तुलसी का पत्ता या जल भी मुझे अर्पण करोगे मैं क्या करूंगा, स्वीकार करूंगा। तो गीता के ज्ञान से हम समझ पाते हैं क्या होना चाहिए जीवन का लक्ष्य। इसी अध्याय में भगवान ने आगे पूछा, हे अर्जुन तुम्हारी अज्ञानता क्या दूर हो गई है। और अर्जुन ने क्या कहा, हाँ अब दूर हो गई है। फिर भगवान ने कहा, करो जैसे तुम्हें ठीक लगे। तो गीता के द्वारा भगवान हमें ये उपदेश दे रहे हैं कि हमें किस प्रकार जीवन को सफल बनाना है। हर व्यक्ति तो गीता को स्वीकार नहीं करता, हर व्यक्ति ये इस संदेश का लाभ नहीं उठाता, कई उठाते हैं। भगवान कहते हैं चातुर्विधा बजानते हैं, चार परिस्थितियों में लोग मेरी शरण में आते हैं। कौन है चार परिस्थिति के लोग? चतुर्विधा, एक है जैसे धन चाहिए, ऐसे धन तो सबको चाहिए। आप कहोगे तुम सारे लोग भी तो धन मांगते रहते हो, हम मांगते भगवान की खुशी के लिए, तो जिसे धन चाहिए। आगे जिज्ञासु, रोगी, पीड़ित, कहीं धन चाहिए, हम सोचते चलो मंदिर जाए, भगवान की भगवान को चंदा चढ़ाएंगे, 10 रुपये चढ़ाएंगे, बदले में 1000 मिलेगा। फिर हम लोग दुखी होते हैं, रोगी, फिर आगे संस्कार अच्छे हों तो उस स्थिति में भगवान की शरण में आते हो। फिर जिज्ञासु, कई बार जिज्ञासा से लोग आते हैं और जुड़ जाते हैं भक्ति में। और ज्ञानी, ज्ञान है कि हमें भगवान की शरण लेनी चाहिए। भगवान की शरण लेने का अर्थ है उनकी शिक्षा का पालन करना, और अगर हम उनकी शिक्षा का पालन करेंगे तो हम सुखी रहेंगे। भगवान कह रहे हैं हर कार्य में मेरे पर निर्भर रहो और हमेशा मेरी खुशी के लिए हर कार्य करो, हमेशा मेरी चेतना रखो। किसी न किसी की विषय की चेतना तो हमें रखनी है। भगवद गीता के 6वें अध्याय का विषय क्या है? हाँ, ध्यान योग। ध्यान योग में भगवान क्या कह रहे हैं? ध्यान योग में भगवान कह रहे हैं मन को क्या करो? मन को अपना बंधु बनाओ और शत्रु नहीं। मन जो है बहुत ही चंचल है, सच बात है। कई बार नहीं, हमेशा लोग पूछते हैं मन को स्थिर कैसे बनाया जाए। अर्जुन ने क्या कहा? मन को वश में लाना, वायु को वश में लाने से भी ज्यादा कठिन है। मन क्या है? चंचल है, ढीठ है। तो आप कहोगे जब अर्जुन का ये अभ्यास है तो हमारी क्या स्थिति? पर अगर हम भक्ति योग की विधियों का पालन करेंगे तो फिर हम सुधर सकते हैं। तो हमारे मन में सदा भगवान की चेतना लेनी चाहिए, हर कार्य का ये भाव होना चाहिए, ये कार्य है भगवान की खुशी के लिए। और तात्पर्य में प्रभु जी क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि ये शिक्षा भगवान उनके प्रतिनिधियों द्वारा प्राप्त कर सकते हो। गीता का संदेश शांति का संदेश है। गीता द्वारा ये स्थापित किया जाता है कि परम भगवान हैं और उनका परिचय भी दिया गया है। गीता के लगभग हर श्लोक के साथ ये लिखा गया है श्री भगवान उवाच, परम भगवान बोल रहे हैं। आगे गीता के द्वारा आपको आत्मा के विषय ज्ञान प्राप्त होता है। भक्तिविनोद ठाकुर महान संत जिन्होंने शुद्ध कृष्ण भक्ति की स्थापना की और जिनकी भविष्यवाणी थी कि एक दिन सारे विश्व से भक्त आएंगे मायापुर धाम में बंगला भक्तों के साथ नाचने गाने के लिए, भक्तिविनोद ठाकुर जी ने कहा है। उन्होंने लगभग 100 ग्रंथों की रचना की थी। उनका कहना है कि यह 2वां अध्याय है, सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है। अगर आप ये शिक्षा को आप समझ लो आपका जीवन सफल हो सकता है। तो गीता के द्वारा भगवान कह रहे हैं मेरी शरण में आओ, मेरा चिंतन करो। कौन सा वो प्रसिद्ध श्लोक, मन मना मामे प्रयोग, मेरा चिंतन करो, मन मना किसी न किसी विषय का चिंतन करना ही है। भगवान का कह रहे मेरा चिंतन करो, तो आप पूछ सकते हो भगवान का चिंतन किस रूप से हम करें। भगवान के आचार विग्रह का चिंतन वो एक उदाहरण है, भगवान की लीलाओं का चिंतन, भगवान की अनेक 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 लीलाएं हैं, भगवान के संदेश का चिंतन। भगवत में आप पढ़ते हो जब भगवान अप्रकट हुए तो उनके सनातन साथी अर्जुन अत्यंत शोक में थे। भौतिक दृष्टि से ये अंदाजा लगाना कि कितना शोक गोपियों का था या अर्जुन का था जब भगवान प्रकट हुए, हम इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते क्योंकि हम वनजीव हैं। तो अर्जुन के लिए अर्जुन अत्यंत दुखी थे जब उन्हें पता लगा कि भगवान अप्रकट हो चुके हैं। फिर अर्जुन ने उन लीलाओं का स्मरण किया जो कि भौतिक दृष्टि से असंभव थी, पर वो सफलता प्राप्त कर पाए क्योंकि उनके मित्र ने सहयोग दिया। उसके पश्चात अर्जुन ने गीता के संदेश का स्मरण आरंभ किया। जब उसने गीता के संदेश का स्मरण आरंभ किया तो उन्हें ऐसे लगा कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं वहां उपस्थित हैं। वो जो शोक था, उदासी था, सब समाप्त हो गया और वो फिर आनंद में थे। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि जैसे कि अर्जुन ने गीता के संदेश का स्मरण किया, उसी प्रकार अगर इस संस्था के भक्त गीता के संदेश का स्मरण करेंगे तो उन्हें क्या लगेगा हमेशा कि भगवान स्वयं वहां उपस्थित हैं, क्योंकि भगवान की वाणी में कुछ अंतर है, भगवान के नामों में अंतर है नहीं, भगवान के वाणी में अंतर है नहीं, भगवान के उपदेश में अंतर है नहीं, पर आप गीता के संदेश का स्मरण कर पाओगे केवल अगर आप इस गीता का अध्ययन भी करो। चैतन्य महाप्रभु श्री रंगम में पहुंचे थे और वहां उन्होंने देखा कि रोज एक ही स्थान पर एक अनपढ़ ब्राह्मण बैठकर गीता के 18 अध्यायों का उच्चारण करता है। क्योंकि ये ब्राह्मण अनपढ़ था, कई श्लोकों का उच्चारण ठीक होता था, कईयों का गलत, और कई श्लोकों का अर्थ वो समझ पाते थे, कईयों का अर्थ बिल्कुल नहीं समझ पाते थे। और जब वो गीता का अध्ययन कर रहा होता था तो उसकी आंखों से आंसू बहते थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने देखा और पहचान लिया कि इस ब्राह्मण में शुद्ध भक्ति के लक्षण हैं। पड़ोस के गांव के लोगों को पता था ये ब्राह्मण अनपढ़ है, तो कई लोग वहां खड़े हो जाते थे उसकी हंसी उड़ाने के लिए, देखो अनपढ़ पंडित ऐसा व्यवहार कर रहा है, बड़ा पढ़ा लिखा है। तो महाप्रभु वहां रुके, महाप्रभु ने पूछा, हे ब्राह्मण, गीता में क्या है जिसके द्वारा तुम ये शुद्ध भक्ति के लक्षणों को प्रकट कर रहे हो? तो ब्राह्मण ने कहा, मेरे गुरु महाराज ने आदेश दिया था रोज 18 अध्यायों का उच्चारण करने के लिए, और क्योंकि मैं अनपढ़ हूं, मैं कई श्लोकों का उच्चारण ठीक करता हूं, कईयों का गलत करता हूं, कईयों का अर्थ मुझे समझ आता है, कईयों का अर्थ मुझे समझ आता ही नहीं। और जब मैं देखता हूं परम भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय भक्त अर्जुन के पार्थ सारथी बन गए, उनके ड्राइवर बन गए एक रूप से, जब मैं भगवान की विनम्रता देखता हूं तो मेरे आंसू बहते हैं, शरीर शिवर करता है। तो महाप्रभु ने उसे गले लगाया और कहा, तुम कहते हो तुम्हें गीता का संदेश समझ नहीं आ रहा, तुम असली गीता के संदेश को समझ गए हो। भगवान की विनम्रता। और फिर महाप्रभु ने उसे 4 महीने के लिए अपने साथ रखा और रोज गीता का गहरा अर्थ समझाया। तो प्रभुपाद जी इस लीला के तात्पर्य में कहते हैं कि इस ब्राह्मण ने अपने गुरु के आदेश का पालन किया। क्या था गुरु का आदेश? रोज गीता पढ़ो 18 अध्याय। तो इस संदेश का पालन किया। हालांकि लोग हंसते थे, उसकी हंसी उड़ाते थे, अनपढ़ पंडित, पर जब भी उसने 18 अध्यायों का जान रोज किया, जिसका अंत में क्या परिणाम हुआ, मैंने भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ। चैतन्य महाप्रभु कौन है? श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नयान्य। राधा कृष्ण प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु के रूप में, किस लिए? पतित पवन हेतु तवा अवतारा, पतितों का उद्धार करने के लिए। ये सुंदर रचना नरोत्तम दास ठाकुर जी ने किए है। नरोत्तम दास ठाकुर एक राजकुमार थे, राजा के बेटे, उनकी जो रचनाएं हैं प्रभुपाद जी उनकी तुलना करते हैं व्यासदेव की रचनाओं से। तो वो कहते हैं महाप्रभु प्रकट हुए कि इसलिए पतितों का उद्धार करने के लिए। तो जैसे कि ये ब्राह्मण गीता के संदेश का अध्ययन रोज करता था, हम भक्तों को भी ये नियम बनाना चाहिए कि हम गीता को रोज पढ़ेंगे। आप ऐसे कितने भक्त हो जो भगवद गीता को रोज पढ़ते हो? हमारे एक भक्त हैं हमारी संस्था में, लालानंद स्वामी, उन्होंने पूरी गीता 160 बार पढ़ी है। तो मैंने उनसे पूछा, आपने 160 बार कैसे पढ़ ली? तो कहते उन्होंने रोज का कोटा बनाया हुआ है 10 श्लोक तात्पर्य के साथ। तो हमारा भी प्रयास रहना चाहिए गीता को रोज पढ़े, 1 श्लोक 2 श्लोक 3 श्लोक पर पढ़े, तो तात्पर्य के साथ। तात्पर्य में प्रभुपाद जी समझाते हैं भगवान ने ये जब कहा है इसका क्या अर्थ होना चाहिए, इसका असली क्या अर्थ है। वो प्रभुपाद जी की रचना अनुवाद तात्पर्य निर्भर है वाणादेव विद्याभूषण की रचना के ऊपर। तो गीता का संदेश हमें रोज पढ़ना चाहिए। तो आप भक्तों को ये निर्णय करना चाहिए गीता का संदेश रोज पढ़ोगे। अगर आप 10 श्लोक नहीं पढ़ सकते तो 2 श्लोक पढ़ो, 3 श्लोक पढ़ो तात्पर्य के साथ, और आप देखोगे आपके पास ठीक ज्ञान रहेगा। माता परदम नन्यास किंचित अस्ति धनंजय, इसे ऊंचा और कोई संदेश नहीं है। नौवें अध्याय में भगवान कहते हैं राजा विद्या राजा को, ये जो ज्ञान है सब ज्ञानों में सबसे महत्वपूर्ण है। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि गीता का अध्ययन छोटी आयु से हो स्कूलों में, पर सरकार ने इसे इनकार नहीं किया। तो गीता के द्वारा भगवान हमें ये कह रहे हैं कि हर का उन सदा उनकी खुशी के लिए कार्य करना है। उनकी खुशी के लिए कार्य करने का अर्थ क्या है? उसका अर्थ है उनके आदेश का पालन। भगवान कहते हैं अंत में क्या कौन सा वो एक श्लोक है जिसमें पूरे गीता का सार है? हाँ, महान एकम शरण हम तुम सुने पाप पूरे मोक्ष हमें घमास महासुचा का क्या अर्थ है? घबराओ मत, अगर तुम मेरे शरण में आओगे मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा, घबराओ मत। तो सर्व धर्म का क्या मतलब? हिंदू मुसलमान धर्म त्याग दो, ईसाई धर्म त्याग दो और वैष्णव बन जाओ, नहीं। उसका असली अर्थ है हर कार्य का लक्ष्य होना चाहिए भगवान की खुशी। दूसरे शब्द में हर कार्य उनके आदेश के अनुसार होना चाहिए। जैसे भगवान चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को शिक्षा दे रहे थे भगवान के शरणागत कैसे हुआ जाए। सनातन गोस्वामी और उनके भाई एक समय उस समय के सबसे प्रसिद्ध राजा के शासन कर, के राजा के राज्य का शासन कर रहे थे, पर दोनों ने छोड़ दी नौकरी, महाप्रभु जी के पास आए। चैतन्य महाप्रभु ने रूपा गोस्वामी को प्रयाग में बड़े गहराई के साथ भक्ति की शिक्षा दी, फिर सनातन को। तो महाप्रभु ने कहा जो भक्ति के लिए अनुकूल है उसे स्वीकार करो, जो भक्ति के लिए प्रतिकूल है उसे त्यागो। तो भक्ति के लिए क्या कार्य अनुकूल है? साधु संग, हरि नाम, शास्त्रों का अध्ययन, विनम्रता का भाव। शास्त्र में बार बार आप पढ़ते हो विनम्रता का भाव अनुकूल होना चाहिए। बिना भी सुनी चाहिए ना तो हमारी ना रोज हमें इस श्लोक का दूसरे से शास्त्र के श्लोकों के साथ इनकी रचना करते हैं। तो ये संक्षेप में उदाहरण है। शास्त्र पढ़ने से बुद्धि तेज होती है। ये साल हमारे जीबीसी की मीटिंग में इस विषय पर काफी गहराई के साथ चर्चा हुई थी कि हम सबको प्रभुपाद के ग्रंथों को ध्यान से पढ़ना चाहिए। ये नहीं कि आधी नींद में हो और खोल गीता खोल ली फिर सो गए। इंग्लिश में कहते हैं स्लीपिंग पिल, डोंट यूज अ गीता एज अ स्लीपिंग पिल। मतलब कि गीता पढ़े ध्यान के साथ, ध्यान के साथ पढ़ोगे तो फिर आप गीता के असली भाव को समझ पाओगे, फिर आप गीता के असली संदेश को समझ पाओगे। तो गीता का संक्षेप में संदेश है हर कार्य करें भगवान की खुशी के लिए, और भगवान अपने प्रतिनिधि द्वारा हमें संदेश देते हैं। गीता में भगवान चौथे अध्याय में क्या कहते हैं? तद्विधि पारिपदेन उपाधि ज्ञान तत्वदर्शन। ये नहीं कि आप किसी व्यक्ति को भी पकड़ लो और कहो हमें शिक्षा दो हमें क्या करना चाहिए। हमें कभी कुछ ऑपरेशन कराना है तो किसी को ही थोड़ी पकड़ते हो, देखते हो पहले उसमें ताने है या नहीं है। तो भगवान हमें कह रहे हैं आध्यात्मिक ज्ञान स्वीकार करो किसी आत्मज्ञानी व्यक्ति के द्वारा, वो व्यक्ति आपको ठीक ज्ञान दे पाएगा। जैसे रूप गोस्वामी जी ने भी हमें अनेक प्रसिद्ध ग्रंथ दिए। रघुनंदन ठाकुर कहते हैं कब वो दिन आएगा जब मुझे रूप गोस्वामी के ग्रंथों का अध्ययन करने का मौका मिलेगा। तो रूप गोस्वामी कहते हैं वाचो वेगम मन चक्रोध वेगम जीवा वेगम, व्यक्ति के मन बुद्धि इंद्रियों पर पूरा वश होना चाहिए, वो व्यक्ति हमें मार्गदर्शन दे सकता है। तो भगवान कह रहे हैं मेरी सदा मेरा चिंतन करो, हम सबको भावी रहना चाहे, ये कार्य हम कर रहे हैं भगवान की खुशी के लिए। तो ये भाव से करोगे तो बंधन से मुक्त हो जाओगे, और अगर हम इस भाव से कर रहे हैं नहीं हमें हर चीज के भोक्ता। गीता में भगवान क्या कहते हैं भोक्ता राम यज्ञ तपोसम सर्वलोकम वैष्णव, परम भगवान है हर एक भोक्ता और भक्त का। जैसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं भक्त का क्या भाव है कि भगवान है हर चीज के भोक्ता, वो है हर चीज के स्वामी, और हमारा क्या कर्तव्य बनता है कि हम सदा भगवान की सेवा में रहें। जो भी योग्यता है जो भी कला है, हर व्यक्ति में कुछ न कुछ कला है। जैसे अगर आप प्रभुपाद के ग्रंथों को देखो, आपने देखा होगा इन ग्रंथों पे बड़ी अच्छी पेंटिंग्स हैं। ये पेंटिंग्स किस कौन करता है, भक्त जिनमें पेंटिंग की कला है। प्रभुपाद जी ने जब अमेरिका गए तो अपने ग्रंथों को प्रकाशित किया पेंटिंग्स के साथ। जो ये पेंटिंग्स भक्तों में जिसमें कला थी उन्होंने की। तो भगवान कह रहे हैं जो भी कला हो जो भी योग्यता हो वो मेरे लिए करो। और अगर हमारे में शंका है किस प्रकार से भगवान की सेवा करें तो आप भगवान के प्रतिनिधियों से यह ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। गीता में हर प्रश्न का उत्तर है, हर समस्या का हल है। हमारे कई प्रश्न होते हैं, गीता में हर प्रश्न का उत्तर है। आपको जानकर खुशी होगी कि आज इस भगवद गीता यथारूप का अनुवाद 70 से अधिक भाषा में हो गया है और सारे विश्व में हजारों महाविद्यालय हैं जहां ये भगवद गीता यथारूप का अध्ययन हो रहा है। और सारे विश्व में लोग गीता पढ़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि इसमें हर प्रश्न का उत्तर है, हर समस्या का हल है। भगवान ने कहा तो खान आया मशाशतम, यहां कहा क्या है कष्ट कष्ट। भगवान गीता के इस श्लोक में कह रहे हैं हर कार्य में मेरे पर निर्भर रहो, मेरे पर निर्भर रहो का ये अर्थ है आप प्रयास करो और फिर निर्भर रहो। ये नहीं कि आप कुछ प्रयास नहीं करो मैं कहो हाँ ऊपर वाला सब करेगा। ऊपर वाला करेगा आपके माध्यम से। प्रभुपाद जी ने प्रयास किया कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए। ये नहीं कि प्रभुपाद जी वृंदावन में बैठे रहे और कहा कि भगवान सब करेंगे। भक्त का भाव रहता है आप प्रयास करेंगे और फिर निर्भर रहेंगे भगवान के निर्णय के ऊपर। भगवान कह रहे हैं सदा मेरी सुरक्षा के अंदर ये काम कीजिए। तो ये होना चाहिए अवसर का भाव। तो आप ये पूछ सकते हो ये भाव हम कैसे अनुकूल करें, हमारी समस्या क्या है। हम रोज गीता पढ़ते हैं, गीता सुनते हैं, पर जो गीता का असली आदेश है उसका पालन नहीं कर पाते। सच बात है, सच है। सब कर पाते तो पूरे विश्व में शांति शांति होती। क्या कारण है हम नहीं कर पाते, क्या कारण है? भगवान कहते हैं गीता में, देवेश गुरमाय मम माया। इस माया का विरोध करना बहुत ही क्या है, कठिन है। बॉम्बे में भी कठिन है, सारे विश्व में कठिन है। हाँ, कोई स्थान है जहां कठिन नहीं है? टेक्नोलॉजी की कृपा से हर बुरी चीज का असर मिनटों में पहुंच जाता है हर जगह, है कि नहीं? तो देखा जाए माया का प्रभाव हर जगह है। तो भगवान कह रहे हैं मामा माया धुरतया। धुरतया मतलब माया का विरोध करना बहुत ही कठिन है। तो आप कहोगे कठिन है तो हमारी क्या उम्मीद? तो आगे भगवान क्या कहते हैं, आगे क्या कहते हैं? मामे मामे माया मिताम। तो जो मेरे ईश्वर में आते हैं वो माया का विरोध कर सकते हैं। तो हम सबका भाव ये रहना चाहिए कि हम भगवान की शरण में आए। भगवान की शरण में आने का अर्थ क्या है? उनके संदेश का पालन करना। क्या है उनका संदेश इस कलयुग में? हरि नाम का उच्चारण, कली कली नाम रूपा कृष्णा होता। तो इस कलयुग में अगर हम हरि नाम लेंगे और साथ में गीता पढ़ेंगे फिर उसका तेजी से प्रभाव होगा। चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे तो एक ब्राह्मण कुर्मा के घर में रुके थे। फिर जब वो चल पड़े वहां से तो उनके एक भक्त थे वासुदेव विप्र। वासुदेव विप्र बड़े दयालु भक्त थे। उनको उनका पूरा शरीर फुंसियों से भरा हुआ था, जिसमें पस थी भारी भारी पस, और कीड़े भी थे। तो वो इतने दयालु भाव के थे, जब वो कीड़ा गिरता था उठाकर वापस जोड़ देते थे। और उनके शरीर से इतनी बदबू आती थी कि अगर वो सड़क के बाएं तरफ में थे तो दूसरे लोग दाएं तरफ हो जाते थे। तो जब वासुदेव विप्र को पता लगा कि महाप्रभु आए हैं और कुर्मा ब्राह्मण के घर में, तो उन्हें मिलने गए। जब मिलने गए तो पता लगा महाप्रभु चल पड़े हैं। वो शोक में लगभग बेहोश हो गए। तो महाप्रभु तो स्वयं भगवान है, अंतर्यामी है। तो वो लौटे, उन्होंने वैसे विप्र को गले लगाया। जब गले लगाया तो उनकी कोर की बीमारी बिल्कुल समाप्त हो गई, बिल्कुल समाप्त हो गई। और वो खूबसूरत युवक बन गए। तो फिर उनके मन में भय था, मैं कहीं घमंडी नहीं बन जाऊं। अगर कोई बहुत खूबसूरत हो, ज्ञानी हो, धनी हो तो घमंडी हो जाता है। तो उन्होंने महाप्रभु से पूछा। उससे पहले उन्होंने उन श्लोकों की भगवतम के दसवें स्कंध में अब सुदामा ब्राह्मण की कथा पढ़ते हो। सुदामा ब्राह्मण गए थे अपने गणेश मित्र को मिलने द्वार का। इच्छा थी कुछ तो बोले बगैर लौट गए। और जब वो लौट गए अपने स्थान में पहुंचे तो क्या देखा, उनकी साधारण कुटिया बन गई थी महल, उनकी पत्नी जो फटे हुए कपड़े पहनती थी, सजी हुई थी रेशम की साड़ियों से और गहनों के साथ, वो तो समझ पाए ये संभव हुआ है मेरे मित्र के कारण। तो फिर वासुदेव पुराणा उन श्लोकों का उच्चारण किया जिनका उच्चारण सुदावा ब्राह्मण ने किया था। उसके पश्चात तो वासुदेव पुराणा ने पूछा, अभी अहंकार मेरे में नहीं आ जाए तो महाप्रभु ने क्या कहा, सदा हरि नाम का चैंटिंग जाप करो, हरि नाम की महिमा का प्रचार करो, गीता का अध्ययन करो, गीता का संदेश का प्रचार करो, और अगर तुम ये दो कार्य करोगे हमेशा मेरे साथ रहोगे, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। प्रभुपाद जी कहते हैं तात्पर्य में, इस संसार के हर भक्त का भी एक कार्य होना चाहिए, हरि नाम करे और गीता का अध्ययन करे, वो हरि नाम की महिमा का प्रचार करे, गीता की महिमा का प्रचार करे। तो साधु संग में रहने से ये चेतना है, वो बंद करें कर रहे 9 बजे, अभी वो बंद कर बंद 9 बज गए। साधु संग में रहोगे तो सदा हरि नाम की महिमा सुनते जाओगे। तो हमें ये निर्णय करना चाहिए कि हम गीता को रोज पढ़ेंगे, गीता को रोज पढ़ोगे आपकी बुद्धि तेज रहेगी। तेज बुद्धि का क्या लाभ है, सरलता से निर्णय कर सकोगे माया से कैसे बचना। तो हमें गीता के संदेश को रोज पढ़ना चाहिए। तो कितने भक्त आप में से तैयार हो, कम से कम एक, कम से कम 2 श्लोक तात्पर्य के साथ आप रोज पढ़ोगे, पक्का 2 श्लोक मिनिमम, ज्यादा कर सकते हो और कम नहीं, ठीक है। अगली बार गीता क्लास दूंगा तो पूछूंगा। हरे कृष्णा। People have to go home now. Okay, Hare Krishna.
Param Pujya Gopal Krishna Goswami Guru Maharaj Ki.